ஓம் சாந்தி. பிரஷ்னோ சே பார், பிரஷ்ன நம்பர் 101. முஜே பஹத் சமய சே மேரி மா முஜே ஷாதி கே லியே ஃபோர்ஸ் கர் ரஹி தி, இஸ்லிய மே மதுபன் மே பாக் கர் ஆ கயா. அப் வோ கந்தர்வ விவாஹ கே லியே சஹமத் ஹோ கயி ஹே. முஜே மதுபன் மே ரஹனா சாஹியே யா அப்னே லௌகிக கர். முஜே கந்தர்வ விவாஹ கர்னா சாஹியே பாபா கி இஸ்கே லியே கியா மத் ஹே, மேரி அச்சி ஸ்திதி கே லியே ப்ளீஸ் யோக்தான் தீஜியே. கியா கரே போலோ, ஜிஸ்கி ஜோ இச்சா ஹே வோ வஹி கரேகா, சாஹே உசே கித்னி பி ராய் தி ஜாய், ரோகா ஜாய். அகர் இச்சா பஹத் திருட ஹே தோ வோ கரேகா ஹி கரேகா. கந்தர்வ விவாஹ கியா ஹோதா ஹே, கந்தர்வ விவாஹ கியா ஹோதா ஹே? ஆட் பிரகார கே விவாஹ ஹே பாரதிய சன்ஸ்கிருதி மே, கந்தர்வ உஸ்மே சே ஏக ஹே. वो हम उसको इस तरह से परिभाषित करते हैं, परंतु गंधर्व विवाह अर्थात लव मैरिज एक रीति से आठ प्रकार के विवाह है, उसमें से पहले चार जो है वो अलाउड कैटेगरीज में आते हैं और आगे के अगले चार जो है वो नॉट अलाउड कैटेगरीज में आते हैं. पहले जो चार है वो अलाउड है, उसमें सबसे पहला होता है ब्रह्म विवाह. ब्रह्म विवाह अर्थात अरेंज मैरिज, माँ बाप और सब कुछ अरेंज करते हैं. उसके बाद में होता है दैव मैरिज. दैव मैरिज में दान दिया जाता है कन्या को. उसके बाद एक मैरिज होता है, उसमें कन्या का मूल्य चुकाया जाता है, सौदे के हिसाब से नहीं पर बहुत कुछ दिया जाता है उनको और ले लिया जाता है कन्या को. एक होता है प्रजापत्य विवाह, उसमें कन्या की इच्छा के बिना विवाह किया जाता है परंतु अच्छे घराने में किया जाता है. तो ये जो चार विवाह है ये अलाउड है, आगे के चार है वो नॉट अलाउड कैटेगरीज में आते हैं शास्त्रों के अनुसार. उसमें एक है गंधर्व. गंधर्व अर्थात माँ बाप की इच्छा नहीं है और भाग के विवाह कर लेते हैं, समाज के विरुद्ध कहो या धर्म के विरुद्ध, वो गंधर्व विवाह उसको कहा गया है अपनी इच्छा से. और उसका भी निकले कहां से थे, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अप्सराएं निकली थी. अब अप्सराएं करे क्या, तो उन अप्सराओं ने गंधर्वों के साथ विवाह किया जो कि राजसी संगीतज्ञ थे, गाना बजाने वाले. और गंधर्वों के साथ विवाह करने की वजह से उस विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया, जो अप्सराओं ने गंधर्वों के साथ विवाह किया. तो उसमें मां बाप की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, खुद ही डिसाइड करना, वो एक विवाह. उसके बाद होता है असुर विवाह. असुर विवाह अर्थात खरीदना उसमें कन्या को और विवाह करना. उसके बाद होता है राक्षस विवाह, अपहरण करके ले जाना. और सबसे खतरनाक होता है पिशाच विवाह, उसमें विवाह बाद में अनैतिक संबंध पहले जबरदस्ती. तो ऐसे वो आठ प्रकार के विवाह के नाते हैं. तीसरा नंबर जो है उसको आर्ष कहते हैं, आर्ष विवाह. तो ये सारे विवाहों में गंधर्व विवाह की यहां बात पूछी है. इस यज्ञ में गंधर्व विवाह की कोई और परिभाषा है? क्या कहते हैं हम गंधर्व विवाह? कोई ये कन्या ज्ञान में है और उसके माँ बाप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं, तो कोई एक कुमार उसके साथ विवाह करता है और दोनों फिर ज्ञान में चलते, इसको गंधर्व विवाह कहा जाता है. तो अभी ये भाई साहब पूछ रहे हैं मैं क्या करूँ, शादी करूँ या ना करूँ. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए बाबा की क्या मत है, और उसके लिए मेरी अच्छी स्थिति के लिए फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो निर्बंधन रहना, ये सबसे पहली श्रीमत है बाबा की। किसी भी बंधन में बंधना नहीं है, किसी भी बंधन में बंधना अर्थात माया का आह्वान करना। जो आने वाली है वो कैसी रहेगी उसका कोई भरोसा नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर है। आज ठीक है, कल ठीक रहेगी नहीं रहेगी ये बता सकता है कोई? आज तो एकदम सौम्य स्वभाव है, कल विकराल रूप धारण कर सकती है, बता नहीं सकते। तो आज लक्ष्मी है, कल काली रूप हो सकती है। शेरनी, घायल शेरनी के पूछ पर पाव रख दिया तो बस गए काम से। तो ये जो मार्ग है विवाह वाला, ये उनके लिए ठीक है जो पहले विवाहित हो गए बाद में ज्ञान में आए, उनको तो अभी छूट नहीं सकते, अब निभाना पड़ेगा। पर जो पहले से छूटे हुए हैं और निर्बंधन है, उनके लिए ये बंधन है, उनके लिए बर्बादी है, उनके लिए विनाश है, उनके लिए आत्मग्लानी होगी और पतन होगा। और ये भी सोचे कि दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगे, इससे बड़ा भ्रम और कोई दूसरा नहीं है। अभी नहीं चल पा रहे हो तो बाद में कहां से चलोगे? वो वैसा ही है जैसे एक बोरी में उसका पैर और हमारा पैर, भागो। कौन सी रेस है वो? बोरी रेस। तो गिरना निश्चित है। इसके लिए कुमार जीवन या कुमारी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इससे बड़ा और कोई जीवन नहीं है। किसी में बंधने का संकल्प, किसी को साथी बनाने का संकल्प ही मृत्यु का आह्वान है। ब्राह्मण जीवन में संडे में की मुरली में बाबा ने पार्टियों से मुलाकात में वरदान दिया था, कौन सा? अमर भव। ये वरदान खुद भी साथ रखना और दूसरों को भी सुनाकर उनको सुरजित करना, इस वरदान से। किस वरदान से? अमर भव। तो ये मार्ग नरक का मार्ग है। जैसे एक युगल होते हैं, उनकी 25वीं सालगिरह होती है, तो वो पति वो पार्टी से निकलकर अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगता है। तो उसकी पत्नी और उसके दोस्त आते, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो कहते, कुछ नहीं, छोड़ो जाने दो। वो कहते, बताओ बताओ क्यों रो रहे हो? वो कहते, छोड़ो जाने दो। वो कहता है कि मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता 25 वर्ष पहले, पर तुम्हारे पिता ने, मतलब इसके ससुर ने जो कि जज था, धमकी दी थी, अगर तुमने शादी नहीं की तो झूठे गवाह प्रस्तुत करूंगा और तुमको जेल में डाल दूंगा 25 साल के लिए। तो वो कहता है, आज वो 25 साल पूरे हो गए थे, आज मैं छूट गया होता। पर यहां तो अभी छूटने का कोई, टेरिबल बॉन्डेज कहा गया है, ये एक बहुत विकराल बंधन विवाह, जिसको वो दिखाया है शास्त्रों में। जैसे ही वो सुखदेव जन्म लेता है, 12 साल का ही जन्म लेता है, और आते बराबर भागने लगता है संसार से। वो उसके व्यास उसके पीछे भागता है, अरे रुको तो। वो बोलता है, मुझे रुकना ही नहीं है संसार में, फंसना ही नहीं है कहीं पर भी। वो भागने लगता है, अकेला निकल जाता है। वो महाराष्ट्र में एक दिखाए है संत रामदास स्वामी, उसका शादी होती रहती है, वो जैसे वो मंत्र पढ़ते हैं ना, सावधान, वो सुनता है और भाग जाता है, सावधान। तो ये सारे वीक संकल्प है, कमजोर संकल्प है। किसी को साथी बनाना, किसी के साथ चलना, साथ साथ ज्ञान योग करेंगे, पवित्र प्रेम, पहले तो सब कुछ हो गया होगा, ये तो पूछने के लिए पूछते हैं। हमने तो पूछा था, हमने तो सब कुछ सबसे पूछ के किया। अगर उत्तर चाहिए तो उत्तर है नो। क्योंकि ये सब बंधन है। इसमें जाना ही नहीं होता है। कुमार जीवन अर्थात सन्यासी जीवन, आज कहा है पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है, साकार मुरली में है आज। तो इन सब झंझटों में और बंधनों में, जंजालों में फंसना ही नहीं है, इससे बाहर अकेले जो होना है होने दो, अच्छा ही होगा उसमें। तो ये पहला प्रश्न। विवेकानंद ने एक जगह कहा है, आई हेट मैरिजेस, सच अ टेरिबल बॉन्डेज, मुझे घृणा है, ऐसा जबरदस्त बंधन है। 102 प्रश्न नंबर 102, 1918 की मुरली में ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हुए वंडर खाते हैं कि क्या मेरी याद से भी बाबा आते हैं। भाई जी मुझे यहां से पूछना है कि क्या ये सच में ऐसा होता है कि जब ब्रह्मा बाबा याद करते थे तब शिव बाबा उनके तन में आते थे, मुरली सुनाते थे। अब यहां भी एक और बात पूछनी है, बाबा मुरली कब लिखते थे, मतलब क्या प्रोसीजर थी, मुरली कब लिखनी कब सुननी, क्या रोज की मुरली एडवांस में बाबा के तन में आ डेली लिखवाते थे, प्लीज क्लियर कीजिए। 1-9-2018 अभी 1 सितंबर की जो मुरली थी उसमें प्रश्न था, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बात करते हैं, ऐसा ही था ना। तो उसमें बहुत सारी बातें थी उत्तर में कि पता नहीं शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल क्यों जाता है। तो ये जो था ये ब्रह्मा बाबा की अपने आप से बातें थी, वो कोई सत्य है ऐसा नहीं था, वो तो बाबा अपने आप से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एकांत में बैठे हैं और स्व से रूरियान चल रही है, क्या मैं जब याद करता हूं तब वो आता है, ये लास्ट लाइन थी उसमें, क्या मैं बाबा की याद में रहता हूं, जब भी मैं भोजन करता हूं तो बाबा की याद में हूं क्या, ये उसकी अपनी बातें चल रही थी। तो ये इन्होंने इसका प्रश्न बना दिया कि ऐसा होता था क्या, तो ऐसा होता था, ऐसा कुछ नहीं है, हो भी जाए तो भी क्या, हाँ हो जाए तो हो जाए, हाँ बस वो उसको याद करता है, वो उसके तन में आ गया, हो गया, याद नहीं कर रहा है तन में आ गया, हमको क्या करना है उससे, मुरली सुनो चाहे उसके तन में याद करने से आया या बिना याद करे हुए आया, आह्वान करने से आया या बिना आह्वान किए हुए आया, कैसे भी आया, आया तो ना, जो आया है वो सुनो, हाँ जो सुनो लिखो पढ़ो बस, चाहे लूला लंगड़ा गूंगा बुखार बीमार कोई भी हो, पढ़ना जरूर है, कल बोला था। जब चाहे वो आएगा, जब चाहे नहीं आएगा, उसकी मर्जी। दूसरा प्रश्न है, ये लिखने का प्रोसीजर कब करते थे बाबा, अमृत वेला 2 बजे उठ के, तो इसमें क्या प्रश्न है मुझे समझ में नहीं आया, एडवांस में मुरली तन में आके लिखवाते थे कि हाँ हाँ, तो सुबह आए तन में प्रवेश कर दिया, लिखा दिया और बस, नहीं नहीं वैसे नहीं, एक ही दिन का फ्रेश ताजा माल तरावटी, आज आया आज मुरली सुना दी, ऐसा तो कभी है नहीं ना कि बाबा 4 दिन बीमार थे और 4 दिन मुरली नहीं चली, ऐसा है क्या, कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसी कोई, तो रोज का रोज ही चलता था ना। तो बस फिर अगला प्रश्न, मैं 8 साल से कुमार जीवन में चल रहा हूं, राजयोग और मुरली जीवन में है, फीमेल्स के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है, लेकिन अब आकर्षण मेल्स में जा रहा है, होमोसेक्सुअलिटी इमर्ज हो गई है, होमोसेक्सुअलिटी, आपकी सारी क्लासेस और मेथड्स ट्राई किए, ऐसी अपवित्रता से मुक्ति का कोई कृपया मार्ग बताओ। LGBT ये एक ग्रुप है संसार में, लेस्बियंस गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स, अभी इनको इस नाम से कहा जाता है, अभी इनको होमोसेक्सुअल्स नहीं कहा जाता है, समलैंगिकता, ये बहुत बड़ा विषय है, कॉन्ट्रोवर्शियल विषय है, और इसके कुछ अलग प्रकार के कारण है, वो व्यक्ति की चॉइस नहीं है, व्यक्ति उसके साथ उसके एनवायरमेंटल फैक्टर है, पर्यावरण से संबंधित हार्मोनल कारण है, जीनेटिक कारण है। ये तीन कारणों की वजह से व्यक्ति इस कैटेगरी में जाता है, लेस्बियन अर्थात स्त्री का स्त्री के प्रति आकर्षण, गे अर्थात पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण। परंतु गे शब्द सबके लिए भी यूज किया जाता है, इवन स्त्री का स्त्री के लिए भी गे प्रयोग किया जाता है, परंतु गे स्पेसिफिक पुरुष का पुरुष के प्रति। फिर होता है बाइसेक्सुअल, स्त्रियों के प्रति भी आकर्षण, पुरुषों के प्रति भी आकर्षण। ट्रांसजेंडर, ये अलग ही कैटेगरी है। न्यूट्रल जेंडर, स्त्रीलिंग भी नहीं, पुल्लिंग भी नहीं, नपुंसकलिंग, वो उस कैटेगरी में आता है। तो धर्म क्या कहता है इनके विषय में, धर्मों की क्या मत है? धर्म के बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मत है, कोई धर्म ने उन्हें स्वीकार किया, कोई धर्मों में बिल्कुल मना किया। इस्लाम बिल्कुल मना करता है, बाइबल बिल्कुल मना करता है, फिर कुछ कुछ धर्म ने बाहरी फेथ में थोड़ा थोड़ा हाँ ना है। हिंदू धर्म मना करता है, सिख धर्म शांत है इसके विषय में। सिख धर्म में विवाह करना जरूरी ऐसा कहा है, पर कहीं पर पुरुष पुरुष का विवाह करना ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसके लिए वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू मेनी सर्वेज कि ये गलत है। एक 2004 में सर्वे किया गया था, इंडिया के जितने साधु संत हैं उनको पूछा गया क्या है आपके क्या ओपिनियन है, सब ने इसके विरोध में बोला है। पर ये जो लोग हैं जो जिनको ये होता है उनको बड़ा प्रताड़ित करते हैं लोग, उनकी छेड़छाड़ करते हैं उनसे। तो उनके अपना संगठन बनाए हैं अपने, उनके राइट्स है कि अपने लाइट्स के लिए लड़ते हैं। हम क्यों नहीं, हम पुरुष पुरुष से शादी करते, स्त्री स्त्री से शादी करती इंडिया में तो। परंतु उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कारण जो है वो ढूंढने के प्रयास किए गए, वो कि उनकी अपनी चॉइस नहीं है। कुछ प्राकृतिक कारण है, कुछ हार्मोनल कारण है, कुछ जेनेटिक कारण है। तो इस तरह के कारण है उनके। इसलिए तो होमोसेक्सुअलिटी, अभी ज्ञान योग क्या कहता है इसके विषय में? बाबा ने इस तरह के कभी कोई प्रश्न कहे नहीं है, ना ही इस तरह के शब्द बाबा ने कभी, समलैंगिकता का किसी मुरली में कोई वर्णन नहीं है उस नहीं, ये तो सदियों से चल रहा है, वेदों में इसका वर्णन है, वेदों में वर्णन है इसका। ये जो फोर्थ है हिजरा, ट्रांसजेंडर, इसका वर्णन तो वेदों में भी है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आया है। वो कि जो न्यूट्रल जेंडर है उसका वर्णन शास्त्रों में है,
वो अलग चीज है, ये अलग चीज है,
बाकी के तीन अलग है। परंतु ऐसा हो सकता है और होता है, कई जगह देखा गया है और धार्मिक संस्थाओं में बहुत ज्यादा देखा गया है, जहां सप्रेशन हुआ है, दमन हुआ है, जैसे नंस फादर्स या कोई बुद्धिस्टिक भिक्षुनी भिक्षु या जैन धर्म में जो सप्रेस रहते हैं, जैसे फीमेल सप्रेस रहती है, उनका फीमेल्स के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, मेल्स मेल्स रह रहे हैं, जैसे प्रिजनर्स है, जेल में बंद है, कितने सालों से ताउम्र उम्रकत की सजा हो गई, अंदर की धड़कती हुई वासनाएं क्या करें, उसका स्पिरिचुअल ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, क्या करेंगे? या फिर सन्यासियों के आश्रम, पुरुष सन्यासी जहां है केवल, तो ये सारी चीजें वहां देखी गई है। पतन का कारण केवल वो स्त्री का आकर्षण ही नहीं, या पुरुष का आकर्षण नहीं, पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, ये सारे लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, इनको अभी इस नाम से पुकारा जाता है, एलजीबीटी। तो एलजीबीटी के बहुत सारे संघ है। विज्ञान इसके विषय में क्या कहता है? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, है तो शरीर तुम्हें, तो ये तो प्रश्न ही नहीं है, ये शरीर और ये स्त्री और ये पुरुष, तुम तो आत्मा समझकर देह से परे निकलना है, तो ये सब तो बंधन हो गया ना। और ये जो भी कह रहे हैं, ये जो साइंस ने भी ये जो तीन खोज के निकाला है, एनवायरमेंटल कारण है या जेनेटिक कारण है या हार्मोनल कारण है, ये वो लोग हेटरोसेक्सुअल के लिए कहते हैं, हाँ ये तो ये एक्सेप्टेड है, बट ये एक्सेप्टेड नहीं है धर्मों में। स्त्री स्त्री का विवाह हो जाए वो एक्सेप्ट ही नहीं है बिल्कुल किसी भी धर्म, बहुत सारे धर्मों ने, कोई कोई धर्मों ने थोड़ी नमी बरती है, परंतु अधिकतर अधिकांश बिल्कुल कठोर है इसके प्रति। हाँ, पर अभी कोई व्यक्ति कोई इस कैटेगरी में है इन चार में से एक, तो क्या किया जाए और वो ज्ञान में आ जाए? पहले के संस्कार है वो भी है, चलो सबसे पहले तो ये पता हो जाना चाहिए, कई लोग होमोसेक्सुअल्स होते हैं और जीवन भर पता नहीं चलता है उनको हम होमोसेक्सुअल है, उनको लगता है लोग क्या कहेंगे, डर रहता है। दो व्यक्ति एक ही कमरे में रहते हैं, दो भाई, और एक को एक के शरीर के प्रति आकर्षण है, पर बताएंगा किसको, लोग हंसेंगे, ऐसा डर रहता है। और वो होमोसेक्सुअलिटी छिपी हुई लंबे समय तक रहती है अंदर। पहले तो डायग्नोसिस हो जाना चाहिए खुद का कि ये इस कैटेगरी में मैं हूं कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद में इलाज, और फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद में इसकी मेन ट्रीटमेंट जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान ही है। और साइंस तो कहता है इसको क्या ट्रीट करे, वो कोई बीमारी थोड़ी ना है जिसको ट्रीट की जाए, उनके नस नस में समाया हुआ है, वो बचपन से ही आकर्षण है उसको। प्राण विनयम से कुछ नहीं होने वाला है इसमें। इसकी विधि जो है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी में कौन स्त्री और कौन पुरुष, इसकी विधि है परमधाम का योग। इसकी विधि है वो तपस्या कि मैं इस ये शरीर भी नहीं हूं, वो शरीर भी। ये तो द्वापर युग से चलो ये सारा आ गया। सतयुग में थे क्या ये चार कैटेगरी, अब ये दूसरा प्रश्न है। सतयुग में ऐसा कुछ था, सतयुग में देहभान ही नहीं, ये भी अभिव्यक्ति देहभान की है ये चारों। यहां पे हॉस्पिटल में एक बहन आई थी, वो कहती थी मुझे पुरुष बनना है, मीटिंग हुई थी उसके लिए अभी 6 महीने के अंदर ही। वो कहती थी मुझे स्त्री रहना ही नहीं है, बिल्कुल मुझे स्वीकार ही नहीं है, मुझे ऑपरेशन कराओ, और मीटिंग हुई थी उसके लिए। उसने कहा मुझे पूरा चेंज कर देना है अपना, सब पुरुष बनना था उसको। तो यहां उसको थोड़ा दुख हुआ, तो कहीं और गई होगी प्लास्टिक सर्जरी, उसमें 4-5-6 लोग चाहिए। एक तो उसमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो उसकी साइकोलॉजी को चेंज करे, अब मैं स्त्री नहीं अब मैं पुरुष, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, सर्जन, सारी चीजें, ऑपरेशन होगा फिर उसका, वो सारा कुछ। तो उसका तो, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि उसका भ्रम है, वो खुद डॉक्टर थी। वो कहते कैसे भी करके मुझे चेंज करना है, बस उसको कौन समझाएगा, वो कोई बाहर की कोई नॉन मेडिको होती तो समझा भी सकते थे भाई ये तुम्हारा भ्रम है। वो तो डेंटल सर्जन थी, उसको कौन समझाएगा, डेंटल सर्जन। मीटिंग हुई थी बाकायदा यहां पर हॉस्पिटल, क्या किया जाए, फिजिशियन चाहिए, इंटेंसिविस्ट चाहिए, आईसीयू और वो सब कुछ, टीम वर्क है वो, सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन वही ना। तो कितना उसमें कितना बुद्धिमान होगा कि मुझे घृणा आती है अपने शरीर से, ऐसा उतना इतना भयंकर उसके विचार थे अपने बारे में, कैसे भी करके मुझे चेंज करना है। और ऐसे पेशेंट जब आते हैं तो हॉस्पिटल तो छोड़ता नहीं है, बड़े बड़े जगह तो, क्योंकि कमाई बहुत होती है फिर इसमें, सब लोग पूरी टीम इन्वॉल्व हो जाती है, और नाम भी होता है ना फिर हॉस्पिटल का कि हमने ये ऑपरेशन कर दिया तो ये सारा है संसार में, ये सब घोर कलयुग के लक्षण है तो ये अगर है, चाहे इसमें करना क्या चाहिए, विधि है उसी परमधाम का अभ्यास, विधि है आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, विधि है ज्ञान की गहराई में जाना, विधि है ये जो स्त्रीत्व और ये जो पुरुषत्व है इससे परे निकल जाना, ये विधि है जो भी ब्रह्मचर्य के खंडन करने वाली बातें हैं उससे दूर हो जाना, विधि है अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य के विषय में पढ़ना, अधिक से अधिक किताबें पढ़ना, अधिक से अधिक इनको जानना, ये लोगों का कैसा जीवन है, रहते हैं आजकल भारत में भी कितने होंगे ये साथ साथ रहते हैं परिवार के विरोध में जाके शादी शादी करते हैं पुरुष पुरुष, तो ये सारी कैटेगरीज है संसार में। हाँ वो चालू है उसका, कई देशों में पास हुआ है, कई इसमें नहीं हुआ है, चालू रहता है। लास्ट प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख क्या है, क्या करके वह प्राप्त होता है, उसमें निरंतर कैसे रहे, और उसमें भी आगे क्या है, उसके भी आगे क्या है, अतीन्द्रिय सुख के आगे अतीन्द्रिय सुख क्या है, अतीन्द्रिय सुख अर्थात वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त किया जाए, वह सुख जो शरीर की सहायता के बगैर प्राप्त किया जाए, वह सुख जिसमें शरीर इन्वॉल्व नहीं है, वह सुख जो आत्माभिमानी स्थिति में प्राप्त हो, वह सुख जहां पे शरीर नीचे छूट गया है, वह सुख जहां पर इंद्रिय कर्मेंद्रिय की हलचल नहीं है या कर्मेंद्रिय और विषय वस्तु का मिलाप नहीं हुआ है, उसके बगैर वो प्राप्त हुआ है, वो अतींद्रिय सुख है। और जिसमें बहुत ऊंची अवस्था है अतींद्रिय सुख, सुपर सेंशियस ब्लिस, सेंसेस से परे जाकर जो सुख प्राप्त होता है वो अति इंद्रिय सुख। तो उसके लिए सबसे पहले इंद्रिय सुखों की क्या व्यर्थता है उसको जानना होगा। इंद्रिय सुख कितने व्यर्थ है, इंद्रिय सुख आदि मध्यांत वाले, इंद्रिय सुख क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, इंद्रिय सुख सभी दुख देने वाले, इंद्रिय सुख सभी के सभी बंधन में बांधने वाले। इंद्रिय सुख सुख तो होता है परंतु बंधन निर्माण हो जाता है एक, और इंद्रिय सुखों की स्मृतियां लंबे समय तक चलती है। इंद्रिय सुखों का जो भोग है उस भोग की स्मृतियां अंतिम सांस तक चलती रहती है, उससे छूटना बहुत मुश्किल है। वो इतना आसान नहीं है कि ये भोग लिया और काम पूरा हो गया, उसकी स्मृतियां भूत के जैसा पीछा करती है, जीवन भर पागल कर देती है व्यक्ति को और उसी की तरफ आकर्षित करती है बार 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 बार। इसके लिए इंद्रिय का आकर्षण, इंद्रिय सुख जहर की तरह कहा गया है। इसकी व्यर्थता को जान लो तो ये अपने आप आना चालू हो जाएगा, अति इंद्रिय सुख। अब उसके भी ऊपर क्या है, वही सबसे ऊपर है परमात्मा प्रेम, वो सब एक ही शब्द है हर चीज के लिए, ऐसा कोई प्रश्न। तो अतींद्रिय सुख सर्वोच्च अवस्था है, अशरीरी अवस्था है, देह से मुक्त अवस्था, शरीर के भान से आत्मा जब अलग हो जाती है तब उसे जो अनुभव होती है, अनुभव होता है वो अतींद्रिय सुख का अनुभव होता है। तो ऐसे ये कुछ प्रश्न थे, और चाहे प्रश्न कितने भी अलग अलग, सारे प्रश्नों के उत्तर कहीं और बाहर से नहीं आएंगे, हर प्रश्न का उत्तर हमारे अंदर समाया हुआ है, खुद ही खोजना है उत्तर को। योग और तपस्या में अपने आप को झोंक दो, अपने आप सारे उत्तर निकल के आएंगे। कोई सटीक उत्तर किसी और से नहीं प्राप्त होगा, सारे उत्तर अंदर ही है, और जितना हम अपने आप को जानते दूसरे हमें नहीं जानते, इसलिए दूसरे हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकेंगे, वो अवचेतन मन में समाये हुए उत्तर वहीं से वो निकलेंगे। ओम शांति।